आदरणीय भ्राता जी, वरिष्ठ भ्राता हैं, यज्ञ के अनन्य रत्न हैं, साकार मम्मा बाबा की पालना आपने भी ली है। आप बहुत ही नम्रचित, मधुरभाषी, सरलचित हैं। आप देहरादून से 1962 में विद्यालय के संपर्क में आए। लखनऊ यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया। इंडियन स्कूल्स ऑफ माइंड धनबाद से आपने मास्टर्स डिग्री ली। फिर उसके बाद ONGC में एज ए जियोफिजिसिस्ट इंजीनियर आपने 28 वर्षों तक कार्य किया। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की पोस्ट से आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया। 1996 में आप यहां ज्ञान सरोवर में फिर समर्पित हो गए, जब यहां एकेडमी की सेवाएं शुरू हुई। तो वर्तमान में आप साइंटिस्ट इंजीनियर विंग के वाइस चेयरपर्सन और एकेडमी की सेवाओं के भी, खासकर कॉन्फ्रेंसेस के भी आप कोऑर्डिनेटर हैं। राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन की कमेटी के भी आप मेंबर हैं। कई अभियानों में आपने भाग भी लिया है और उनको ऑर्गेनाइज भी किया है, खासकर जब 1986 में भारतीय एकता युवा पदयात्रा हुई। वो 12 पदयात्राओं का आपने बहुत कुशलता से व्यवस्थापन किया। उसके बाद पर्यावरण सुरक्षा अभियान हुए, इंडो नेपाल पर्यावरण सुरक्षा अभियान, वो भी आपने निकाले। और उसके लिए आपको 1992 में अर्जुन सिंह जी, जो उस समय पर्यावरण मंत्री रहे, HR मिनिस्टर थे, उनसे आपको पुरस्कृत भी किया गया। इसके अलावा भी कई पुरस्कार आपको मिले हैं। आप देश विदेश में भी बहुत स्थानों पर जाते रहते हैं और बाबा के इन संदेशों को और अपने अनुभवों से आपने अनेक आत्माओं को लाभान्वित किया है। आपके लिए मैं कहूंगी, सीप को मोती मिले तो और क्या चाहिए, रात को चांदनी जगे तो और क्या चाहिए, और हमें आपका अनुभव युक्त क्लास मिले तो और क्या चाहिए। हम सभी को संस्कार परिवर्तन करना कठिन लगता है। संस्कार बहुत सरलता से हम कैसे अपने परिवर्तन करें, इस विषय पर आप हमें विचार देंगे। संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन।
ओम शांति। बहन जी ने तो अभी 2-in-1 कराया। 2-in-1 कैसे, सबकी एक्सरसाइज भी हो गई, चेतनता में वृद्धि हुई, और साथ ही साथ और क्या हो गया, हथेली बजाने से एक्यूप्रेशर भी हो गया और ताजगी भी आई। तो स्थूल रीति से तो हमने देखा, साथ ही साथ एक बार सूक्ष्म रीति से हम और ताजगी ले आए। जैसे ब्रह्मा बाबा यज्ञ के आदि में सभी ब्राह्मण वत्सों के साथ किया करते थे, तो अंदर एक गहरी श्वास लेंगे और उसे निकालते हुए ओम की ध्वनि करेंगे, और फिर दूसरा श्वास लेंगे और उसे निकालते हुए शांति की ध्वनि करेंगे। ओ शांति। हम सभी की यही इच्छा रहती है, विशेष करके जब से इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में आते हैं, कि हमारे सारे पुराने संस्कार समाप्त हो जाएं और जैसा बाबा चाहता है वैसे हमारे अंदर संस्कारों की, नए संस्कार, दिव्य संस्कार, फरिश्ताई संस्कार, इन सब की पुनर्स्थापना हो जाए। तो आज इसी विषय पर ही हम सब लोग कुछ चर्चा करेंगे, जैसे कि बाप दादा ने हमें समय प्रति समय ज्ञान के आधार पर बताया है। तो सबसे पहली आवश्यकता संस्कार परिवर्तन में क्या होती है, हम कुछ थोड़ा एडवांस बातें डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तक तो हम सब ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं 10, 20, 25, 40, 50 साल से, अलग अलग वर्षों से, इसलिए प्रेलिमिनरी बातें तो हम सब जानते हैं, शुरू की बातें सब जानते हैं। और अक्सर ये अनुभव करते हैं कि काफी हद तक तो हमारे में संस्कार परिवर्तन हो गए हैं, और विशेष करके स्थूल रीति के संस्कार, हमारा खान पान सुधर गया, जीवन व्यवहार सुधर गया, रहन सहन सब सुधर गया, बहुत अच्छा हो गया, और हमें भी अपने जीवन में परिवर्तन अनुभव होता है। लेकिन एक स्थान पर आकर के हमें लगता है कि जैसी बाबा की एक्सपेक्टेशन हमसे है, तो वैसी एक्सपेक्टेशन फुलफिल करने में, पूरी करने में शायद अभी हमारे अंदर कुछ पुरुषार्थ में बाकी है। हमारे जो लक्ष्य है और वर्तमान जो लक्षण है उनमें कुछ अंतर है, और इस कारण से कई बार उतनी संतुष्टता का अनुभव नहीं होता जितना होना चाहिए। जो बाबा कहता है संतुष्ट मणि हो, सदा खुश रहो, तो सदा संतुष्ट भी नहीं रहते, क्योंकि संतुष्टता का आधार है फुलफिलमेंट, भरपूरता। जहां भरपूरता होती है वहां संतुष्टता होती है, जहां खालीपन होता है कुछ वो असंतुष्टता को जन्म देता है। तो इस कारण से, इसके अभाव के कारण संतुष्टता के, हमारे अंदर वो जो संस्कार परिवर्तन होने चाहिए, जो बातें परिवर्तन, फॉर एग्जाम्पल बाबा कहता है 8 घंटे तक याद की यात्रा कर लाओ। हम लोग देखते हैं, बहुत कोशिश भी करते हैं, समझते हैं कि पहले से तो ज्यादा हो गई है, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, लेकिन 8 घंटे तो बड़ी मुश्किल है। इसी रीति से और चीजों में बाबा कहता है कि अपने अंदर इतना परिवर्तन हो, दृष्टि वृत्ति में, अपने स्वप्न के अंदर भी, जो कहीं पर भी कोई अपवित्रता का स्थान न हो। तो हम जब अंदर झांकते हैं लगता है अभी जितनी बाबा चाहता है उतनी हमारी दिव्यता नहीं आई है, और आने में थोड़ा अंतर है। तो आज उसी सूक्ष्म बातों पर हम लोग आगे चर्चा करते हैं। तो वर्तमान समय जहां तक हम पहुंचे हैं और जो हम चाहते हैं परिवर्तन करना, उसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है वो है महसूसता की। हमें अंदर पहली महसूसता होनी चाहिए कि हाँ, अभी मेरे लक्षण और लक्ष्य में कुछ अंतर है, और ये महसूसता केवल ऊपर की ही नहीं होनी चाहिए। बहन जी पूछते हैं या कवि भक्ति में आते हैं, बाबा के सम्मुख जाते हैं, बाबा हाथ खड़ा करवाते हैं, और ये सब जब होता है देखते हैं तो लगता है कि हाँ, जब ऐसे वातावरण में आए हैं, मधुबन के पवित्रतम वातावरण में आए हैं, तो अंदर होता है महसूसता, चेंज भी होता है, परिवर्तन भी होता है, लेकिन वो परिवर्तन पूरा स्थायी नहीं हो पाता। तो पहली आवश्यकता आज अपने अंदर झांकने की है, महसूसता की। और महसूसता में बाबा ने बताया है दो प्रकार की महसूसता होती है। एक तो है दिखावे की महसूसता, कभी मानो कोई बात हो जाती है जो इतनी मर्यादा पूर्ण नहीं होती है, कोई बात हुई तो हम सॉरी कहने का हमारा वो एक आदत हो गई है और बस सॉरी कह के हम छूट जाते हैं, दिखावे की महसूसता। तो इससे क्या होता है, अंदर तो हमारे में ज्ञान है ये नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने को ही कई बार हम लोग चला लेते हैं कि ये तो होता ही है, कौन बना है अभी तक, फलाना देखो 50 साल 70 साल 80 साल पुराने हैं, उनमें भी ये संस्कार है आदि आदि। तो दिखावे की महसूसता जो है ना, उससे क्या है, जो हमारा अंदर का विवेक है, जो बुद्धि की शक्ति है, हम उसका जैसे खून कर देते हैं, अपने विवेक का खून कर देते हैं। जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, लेकिन सही को एक तरफ किनारा करके विवेक का जब खून हो जाता है तो क्या हमारी प्रोग्रेस रुक जाती है, उन्नति। और बाबा ने कहा है ये दिखावे की महसूसता न हो बल्कि दिल की महसूसता हो। और जब दिल की महसूसता होती है अंदर से, बस कोई बात हो जाती है, आप देखोगे कभी कोई हमारी मर्यादा के विपरीत बात हो गई है, हमें मालूम है ये नहीं होना चाहिए लेकिन हो गई, तो क्या होता है, अंदर दिल अपने को खाता है, हमारी कॉन्शियस हमारी बाइट करती है। तो उसके अंदर वो है दिल की महसूसता। और जब दिल की महसूसता हो जाती है तो क्या होता है, बाबा कहता है वो दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त कराती है, बाबा की आशीर्वाद मिल जाती है। और जब हम अपने से प्रतिज्ञा करते हैं कि हाँ बाबा, जो हुआ आपने कहा है उसे पीछे छोड़ दो ड्रामा, आज मैंने जैसे उसे पीछे छोड़ दिया, अब आगे से इस बात को न करने का, ऐसा न बोलने का, ये न सोचने समझने का मैं संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ। और इस महान पवित्र भूमि में आके अगर कोई संकल्प लिया जाता है तो उस संकल्प में सिद्धि समाई हुई होती है। बाहर भी हम संकल्प लेते हैं, अपने अपने घरों में, वहां भी भट्टियां होती हैं, रोज मुरली भी सुनते हैं, लेकिन वहां जो संकल्प लिया हमने मानो शुद्ध वातावरण में, और बाहर वातावरण में अधिकतर समय रहने के कारण वो संकल्प को जल नहीं मिल पाता, वो संकल्प प्रस्फुटित नहीं होता, वो संकल्प का बीज जो है वो पौधा बन के वृक्ष नहीं बन पाता है, वो वहीं पर ही संकल्प कई बार खत्म हो जाता है। तो इसीलिए महसूसता की शक्ति हमारे अंदर अभी यहाँ पर जब तक है 2-3 दिन और भी डेवलप हो, बस अंदर ही अंदर उस बात को बाबा ने कहा। और महसूसता की शक्ति कैसे होगी, उसके भी जैसे ये 2-3 स्टेप हैं कि महसूसता हो, तो महसूसता तब होती है, हम सब की कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, अपने से, दूसरों से, परिस्थितियों से और परिवार वालों से, जो हमारे प्रोफेशन में होते हैं उनसे, हरेक से, हरेक व्यक्ति वस्तु से एक्सपेक्टेशन होती है, आकांक्षा ये ऐसा करे। तो बाबा ने बताया है अभी तो ये सृष्टि नाटक का पार्ट है, हरेक जो है हम अपने को तो बदल सकते हैं, दूसरे को नहीं बदल सकते हैं। तो इसीलिए दूसरे को बदलने की इच्छा की बजाय हम अपने पर कंसंट्रेट करें कि मुझे ही बदलना है, मुझे ही चेंज होना है, ये महसूसता हो तो एक्सपेक्टेशंस जब होती है तो क्या होती है, जब एक्सपेक्टेशन अपने कंट्रोल में होती है, बदल कम हो जाती हैं, तो दूसरी उसकी स्टेज है एक्सेप्टेंस। हम दूसरे को वो जो है जैसा है उसे स्वीकार कर लेते हैं, उसके बदलने की इच्छा नहीं रखते कि ये व्यक्ति बदले तो मैं बदलूं, भाई मैं इतनी सेवा करके आया और बहन जी ने पानी भी नहीं पूछा मानो मुझे। वो एक्सपेक्टेशन होती है तो नहीं होती है फुलफिल, जब एक्सपेक्टेशन तो हमारा खुशी का स्तर कम हो जाता है। इसीलिए किसी ने बड़ा अच्छा डिफाइन किया है हैप्पीनेस, खुशी इज इक्वल टू, जैसे अंग्रेजी में फार्मूला होता है एक्सपेक्ट, हैप्पीनेस इज इक्वल टू प्राप्ति यानी अचीवमेंट्स डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेशंस। हैप्पीनेस यानी खुशी, प्राप्ति डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, आप आकांक्षाएं अपेक्षाएं। तो जितनी हमारी अपेक्षाएं दूसरों से कम होंगी, अपेक्षाएं कम होंगी उतना हैप्पीनेस लेवल हमारा हाई होगा। वही तो बाबा चाहते हैं, बच्चे सदा खुश रहें, हर परिस्थिति में खुश रहें, कोई भी संबंधों में कभी कटुता ना आए, खुश रहें। तो जब एक्सपेक्टेशन हमारी कम होती है तो एक्सेप्टेंस हमारी बढ़ती जाती है, हम दूसरे को भी एज इट इज स्वीकार कर लेते हैं। जो बाबा ने कहा है, बाबा ने भी तो हमें वैसा ही स्वीकार किया, हम जो हैं जैसे हैं, बाबा ने कहा तुम बच्चे मेरे हो, जितनी भी कमी है कमजोरी है जो भी है तुम मेरे हो, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। ऐसे ही दूसरों को भी जब हम जो हैं जैसे हैं वैसा स्वीकार कर लेंगे तो क्या होगा, हमारी संतुष्टता खुशी वो बढ़ती जाएगी और ये महसूसता जितनी होगी कि हाँ हर एक जो है अपना अपना, जैसे कहने तक ही नहीं कि पार्ट बजा रहा है, उसको हम स्वीकार कर लें, जो कर रहा है हाँ ये ऐसा ही करेगा, ये ही इसका ड्रामा में पार्ट है, तो उससे हमारी अवस्था कुछ भी विचलित नहीं होगी, हमारी उसके प्रति एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इतने साल इसे ज्ञान में हो गए। बाबा कहता है संभाव रखो सबके प्रति, लेकिन इन बहन की भाई की संभाव दृष्टि तो नहीं है, फलाने भाई बहन की तरफ तो बहुत इनकी अच्छी रहम की दृष्टि है, मेरे प्रति वैसा भाव नहीं है, आदि आदि कुछ भी अगर बात होंगी तो वैसा नहीं। तो इसलिए एक्सेप्टेंस हर एक को, और जब जितनी एक्सेप्टेंस आती है तो उतनी फिर रियलाइजेशन शक्ति अपनी तरफ बढ़ती जाती। क्यों? क्योंकि जब हम बाहर का देखना बंद कर देंगे ना तो फिर अंदर हम अपने उतरते जाते हैं। जब तक हम बाहर व्यक्ति वस्तु वैभव संबंध उनको देखते हैं, उनमें इन्वॉल्व रहते हैं बहुत ज्यादा, तो हमारी अंदर की यात्रा महसूसता का यात्रा वो शुरू नहीं हो पाती। तो इसलिए आज जिसके लिए हम बैठे हैं वो परिवर्तन, तो जब थोड़ी महसूसता होती है तब हमारा परिवर्तन शुरू हो जाता है। महसूसता के बाद ये दूसरा है परिवर्तन। ये बस परिवर्तन शक्ति ही ईश्वर के निकट आने का साधन है। बाबा भी देखता है, बाबा ये नहीं देखता ये बच्चा कैसा है, जब से ज्ञान में आया उससे पहले की बात बाबा नहीं देखता, क्योंकि दुनिया ही कलियुगी है, अंतिम जन्म है, 84 जन्मों का पार्ट बजा के और खास 63 जन्मों का पार्ट बजा के ये आत्माएं आई हैं, बहुत विकट परिस्थितियों में पास हुई हैं, इसीलिए बाबा वो नहीं देखता। लेकिन जब से हमारा नया जन्म शुरू होता है उस दिन से बाबा के घर में हमारी जैसे रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। इसीलिए यही हमारी यात्रा जो है, जब से हमारा नया जीवन ज्ञान का जीवन शुरू हुआ उससे अगर हम देखते जाएं तो परिवर्तन शक्ति पल पल पर हमें महसूस होती जाती है। हुआ, सभी बैठे हैं यहाँ पर, सभी ने बाहर के स्थूल परिवर्तन तो कर ही लिए हैं जैसा बताया, अब आवश्यकता है और अंदर के परिवर्तन की। तो परिवर्तन में ये सूक्ष्म जो बातें हैं जिन पर आज हम और विशेष डिस्कस करेंगे, तो बाबा ने बताया है परिवर्तन। हम कहते हैं ना, हम बदलेंगे जग बदलेगा, कहते हैं ना। हम तो बदल गए, बदलने के बाद ही तो यहाँ पर आए हैं। हर एक 10, 20, 25, 50 साल में अलग अलग रीति से परिवर्तित हुआ है, आए हैं। हम तो बदल गए, लेकिन क्या जग बदला है? जग तो अभी तक बदला नहीं है, बहुत कम। जग तो और ही अति तमो प्रधानता की तरफ जाता जा रहा है। सब देखते हैं दुनिया के समाचार, हम लोगों के यहाँ अधिकतर अधेड़ अवस्था वाले बैठे हैं। देखो, जब हम छोटे थे, बच्चे थे या युवा थे, तब संसार में फिर भी कितनी सतोगुणी थी। हम लोगों के जीवन काल में ही, और अभी तो अति तमो प्रधानता, काम में, क्रोध में, अहंकार, संसार। तो जग बदला कहाँ, उल्टी तरफ जग बदल रहा है। तो ये किस बात का प्रमाण है? क्योंकि जग नहीं बदला, इसलिए अर्थात हम अभी पूरे नहीं बदले। स्लोगन है ना, हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। जग तो उल्टा बदल रहा है, नहीं बदला है, और तमो प्रधानता की तरफ ज्यादा जा रहा है। तो इसका मतलब हम भी अभी उतने नहीं बदले हैं। बदले हैं, लेकिन उतने नहीं बदले हैं जितना बाबा चाहता है, जो समय की पुकार है, कॉल ऑफ द टाइम है। तो उसके अनुसार बदलने के लिए, और परिवर्तन तो संसार का नियम है। शुरू से देखें तो परिवर्तन, बस हर एक को कोई ना कोई स्ट्राइकिंग मूवमेंट की आवश्यकता होती है। ऐसे लौकिक दुनिया वालों के भी हम इतिहास देखेंगे ना, मानो सूरदास है, कबीरदास है, या भरत हरि हैं, बड़े बड़े जो बाद में महापुरुष बने, वो भी बदले और अति तमो प्रधानता से अति सतो प्रधानता, उस समय के अनुसार वो बदल गए। सूरदास थे, जब उन्होंने महसूस किया कि भाई ये आंखें धोखा देती हैं, आंखें फोड़ ली, लेकिन उन्हें ये रियलाइज बाद में हुआ कि आंखें तो मैंने फोड़ ली, लेकिन मन का कलुषित पना तो गया नहीं, मन के विकार तो गए नहीं। तभी उनकी रचनाओं में सारा मन का वो प्रकट होता है। बहुत भक्ति भाव की भी उन्होंने रचनाएं की, लेकिन उन रचनाओं के साथ साथ मन पापी है, कपटी है, नीच है, ये सोचता है। तो ये भाव तो आंखें बाहर के परिवर्तन से ही नहीं, लेकिन आवश्यकता है अंदर का परिवर्तन। इसी प्रकार से तुलसीदास का सब जानते हैं, पत्नी के वियोग में बहुत दैहिक प्यार था, और वो जब पत्नी गई मायका तो सांप को रस्सी समझ के, लेकिन ये उनके जीवन परिवर्तन का उस मोमेंट उन्हें रियलाइज हो गया कि बस, अरे इतना अगर प्रेम मैं प्रभु से रखता तो क्या होता, जैसा उनकी पत्नी ने बोला, और वो परिवर्तन का क्षण आ गया। और उसके बाद की उनकी रचनाएं सारी भक्ति रस में लीन, कैसी रचनाएं हैं संसार भर में, उनका नाम प्रसिद्ध हो गया। भरत हरि बहुत बड़े राजा थे, फिर भी राजा होने के बाद भी उन्होंने त्याग किया, सब चीज छोड़ा, धन, राज्य भाग आदि आदि, ऐसे ही बस छोड़ के वो जा रहे थे। क्या देखा उन्होंने, सड़क पर कोई चीज चमक रही थी। उन्होंने सोचा कोई ऑर्नामेंट है, सोने की चीज है या क्या है, उठाया, क्या था? पान की पीक, पान खाते हैं ना, उसको थूक देते हैं तो वो जैसे चांदनी की रोशनी में चांद की चमक रही थी। और वो देख करके, और जब हाथ उनका खराब हो गया, और वो तो एकदम रियलाइज हुआ, रही मैंने जीवन छोड़ दिया, पत्नी, राज्य भाग, इतना बड़ा धन दौलत, लेकिन इस चीज के पीछे मेरा मन चला गया, रियलाइज हुआ, और वो बस तब से ऐसा वैराग्य जागा भरत हरि का कि वो कवि भी बन गए वैराग, और उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की। तो ये आप भी समझो, अभी तक भी हमने बहुत त्याग किया है, सब कुछ किया है, लेकिन अभी हम इस बार जो भगवान के घर में आए हैं, बाबा के घर में, तो हम ये उपलब्धि लेने आए हैं, ऐसा परिवर्तन करने आए हैं जो हमारा सदाकाल का परिवर्तन होगा। तो इसीलिए ये जब महसूसता हो जाती है तो परिवर्तन का क्षण जो है, और ये परिवर्तन अब हम ब्राह्मणों का, जिन्होंने सर्टेन स्टेज तक तो आ गए हैं, बाबा ने कई बार सर्टिफिकेट भी दिए हैं, साकार मुरली में भी कई बार संदेश में भी बाबा देते हैं। हमें याद है कुछ वर्ष पहले गुलजार दादी जी संदेश लाए थे, यहाँ पर तो रहते हैं, किन्हीं किन्हीं विशिष्ट मौकों पर जब दादी जाते हैं संदेश, तो उन्होंने बताया कि बाबा ने आज बच्चों को एक सर्टिफिकेट दिया। कौन सा सर्टिफिकेट? बाबा ने कहा मेरे बच्चे हाँ अभी विकारी संकल्प न आए उसमें तो बहुत पास हो गए, विकारी संकल्पों के ऊपर तो उन्होंने विजय प्राप्त करी है, लेकिन अब उन्हें व्यर्थ संकल्पों के ऊपर विजय प्राप्त, विकारी संकल्प तो नहीं आते, कम आते हैं, अधिकतर में नहीं आते, लेकिन व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं। तो अब बच्चों को ये समझना चाहिए कि ये व्यर्थ संकल्प नहीं है, ये विकारी संकल्प है। ब्राह्मण बच्चों के लिए ये व्यर्थ संकल्प ही जैसे विकारी संकल्प है, इसलिए इन पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या करना है, इस पर बच्चों को बहुत बहुत अटेंशन देना है। तो परिवर्तन के लिए सबसे पहली आवश्यकता महसूसता, और दूसरा अटेंशन। अब अटेंशन की बहुत जरूरत है, जिस चीज में, चाहे याद की यात्रा हो, चाहे कोई पर्टिकुलर संकल्प हो, चाहे संबंधों में या बोल में मधुर मिठास लाने की कोई भी बात हो, उस पर अटेंशन देने की जरूरत है, और वो अटेंशन जितना स्ट्रांग होगा उतना हमारा परिवर्तन ज्यादा होता जाएगा। तो इन सब के लिए पहले अभी और सूक्ष्म आवश्यकता, और आगे क्या है, महसूसता और वो सब देखी। तो हम कहते तो हैं कि जैसा स्मृति होगी, स्मृति का परिवर्तन, बाबा ने भी आके सबसे पहले ये सूक्ष्म परिवर्तन, जो हम लोग टोटल परिवर्तन जैसा ये विषय बताया, संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन, तो संसार परिवर्तन तक जाने के लिए पहले टोटल 6 स्टेजेस हैं, और 6 स्टेजेस में पहली 3 स्टेज हैं सूक्ष्म, उसके बाद 3 स्टेज हैं थोड़ा स्थूल। तो हम लोग कहते तो है कि ये स्मृति से शुरू होती है, कि जैसी स्मृति वैसी वृत्ति, स्मृति भी सूक्ष्म है, वृत्ति भी सूक्ष्म है, जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि, दृष्टि भी बहुत सूक्ष्म है, ये देखेंगे ये दृष्टि ये नहीं है, दृष्टि कुछ और है, फिर जैसी दृष्टि, ये 3 चीज सूक्ष्म हो गई, स्मृति वृत्ति दृष्टि, और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, सृष्टि बाद में आती है लास्ट में, दृष्टि के बाद और क्या है, प्रवृत्ति, कृति, उससे भी पहले स्मृति वृत्ति दृष्टि वैसी कृति यानी वैसे कर्म, और जैसी कृति वैसी प्रवृत्ति, वही हमारा संसार होगा, और जैसी प्रवृत्ति वैसी सृष्टि, अल्टीमेटली सृष्टि तक पहुंचना है, जो बाबा ने कहा है सारी सृष्टि को ही हमें पावन बनाना है। तो 3 चीजें स्थूल बात की, वो तो और सहज हैं। अभी हम एकदम सूक्ष्म बातों पर जाते हैं कि जैसी वृत्ति स्मृति वृत्ति और दृष्टि, ये अति सूक्ष्म, हम सब जानते हैं हाँ, स्मृति से जो ये यात्रा शुरू होती है, वृत्ति, वृत्ति क्या चीज है, वृत्ति क्या, हम सब अक्सर करके यूज तो करते हैं ना, वृत्ति का परिवर्तन ही वास्तव में सच्चा परिवर्तन है। तो वृत्ति क्या चीज है, है? क्या बोला, सुनाई नहीं पड़ा, एटीट्यूड। अच्छा, और वृत्ति जो है ना, ये आत्मा की स्वाभाविक प्रवृत्ति का नाम वृत्ति है। जो आत्मा की स्वाभाविक, उसमें कुछ वो नहीं करना पड़ता, संकल्प से भी सूक्ष्म, इसीलिए बोलते हैं संकल्प तो जैसे करते हैं, संकल्प आते हैं, हम ऑटो सजेशन दे सकते हैं, उस पर अप टू सम एक्सटेंट हमारा कंट्रोल रहता है, लेकिन वृत्ति पर नहीं है। क्योंकि वृत्ति जो है, अनेक 64 जन्मों से जो आत्माओं में संस्कार भरे हुए हैं, उनका सम टोटल जो है ना, पिछले स्पेशली 63 जन्मों से जो कर्म करते आए हैं, तो जो सूक्ष्म, कई बार हम बोलते हैं ये तो मेरे मन चित्त में भी नहीं था, ये संकल्प में भी नहीं था, स्वप्न में भी नहीं था, फिर ये कैसे बात हो गई, कैसे आ गया। तो इस जन्म का चाहे ना हो, लेकिन पिछले जन्मों के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो एक्यूमुलेशन हुआ है, वो हमारी, और उस पर हमारा बहुत हद तक कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं क्या क्या, किस संबंध में क्या क्या हम लोगों ने पिछले 63 जन्मों में किया है। तो हमारी ये यात्रा ही, संगमयुगी यात्रा ही पूरी वृत्ति से लेकर कृति तक की यात्रा है। वृत्ति एकदम सूक्ष्म मोस्ट, कृति यानी कर्म पूरा स्थूल चीज। तो ये वृत्ति से कृति की यात्रा पर ही पूरा अटेंशन। तो वृत्ति जो है, एक तो आत्मा की स्वाभाविक प्रवृत्ति का नाम वृत्ति है, और दूसरा वृत्ति जो होती है, ये दो प्रकार की वृत्ति है, एक है अंतर्मुखी वृत्ति, एक है बाह्य मुखी वृत्ति। और इसी ने कई बार बाबा की अव्यक्त मुरलियों में भी आता है ना, सुना होगा कि अंतर्मुखी वृत्ति जो है, क्योंकि हमारे जीवन पर सारा प्रभाव किसका पड़ता है, वायुमंडल का, एक स्थूल वायुमंडल, एक सूक्ष्म जिसमें व्यक्तियों में, समाज में, दुनिया में रहते हैं, और ये तो कलयुगी दुनिया है। तो बाहर के ये वायुमंडल का प्रभाव अगर हम पर पड़ता है, इसका मतलब क्या है, हमारी वृत्ति बाह्य मुखी है। क्योंकि अंतर्मुखी वृत्ति होगी वो वायुमंडल बनाती है, और बाह्य मुखी प्रवृत्ति वो वायुमंडल के प्रभाव में आ जाती है, वो वायुमंडल बना नहीं सकती, उसके प्रभाव में आ जाती है। तो हम प्रवृत्ति वाले खास कहते हैं, मधुबन में रहते हैं, सेंटर में बहुत अच्छा रहता है, बस जब बाहर जाते हैं अपने उसमें, तो फिर वो याद नहीं रहती, वैसा स्मृति नहीं रहती, बदल जाते हैं। क्यों? इसका मतलब हमारी वृत्ति जो है उस समय बाह्य मुखी है, तो वायुमंडल के प्रभाव में आ जाते हैं। तो इसलिए अब एक तो ये भी चेक करने पर करना कि हमारे, अगर हम, मैं बाहर के वायुमंडल के प्रभाव में आ गया हूं, इस समय मैं बाह्य मुखी वृत्ति है, तो तुरंत ही हम स्विच ऑन कर दें अंतर्मुखी प्रवृत्ति की ओर। और आप जैसे ही अपने को ऑटो सजेशन देना शुरू करेंगे, अपने को जैसे शिविर वगैरह में बहने हमारी जब योग कराते हैं तो देती है ना बाहर वाले लोगों को, कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, और ये मेरा धाम नहीं, परम धाम आदि आदि। अब हम उससे भी ऊपर, ये तो इनिशियल स्टेज है जिसे हमने क्रॉस कर लिया, उससे ऊपर अंतर्मुखी प्रवृत्ति के लिए बस ये करें कि मैं आत्मा फरिश्ता स्वरूप, मैं आत्मा। अब फरिश्ता क्या होता है, उसको मन के अंदर इनिशियली संकल्पों में लाएं, इस संसार, इससे मेरा जैसे कोई संबंध नहीं, रिश्ता नहीं, अब मैं अलग हूं। इमेजिन करें, विजुअलाइज करें कि मैं आत्मा आकाश में बाबा के साथ चक्कर लगा रही हूं, और फरिश्ते के दो पंख होते हैं, जैसे मैं बाबा के साथ चक्कर, सृष्टि का बाबा, कई बार कहते हैं ना, आज बाबा चक्कर लगा के आए, हम भी बाबा के साथ चक्कर पर निकल जाए। हम विजुअलाइज करें कि मैं सूक्ष्म वतन में हूं, और यहां स्थूल वतन में, जिस समय जब आवश्यकता हो मैं पार्ट बजाने के लिए यहाँ आई हूँ और इसके बाद मैं चली जाऊंगी। और बाबा को हमने देखा, ब्रह्मा बाबा को तो इसका बहुत मास्टर अभ्यास था कि जिस समय हम चाहें देह में आए पार्ट बजाएं। बाबा भी ये करते थे, पार्टियां आती थी, बस सबको मिले, टोली खिलाई, हालचाल पूछा, उनको सजेशन दिए, सब करे, और जैसे पार्टी एक जाती थी दूसरी पार्टी के आने में 10-15 मिनट का अंतर होता था, बाबा देह से न्यारे हो जाते थे एकदम। पता कैसे चलता था देह से न्यारे हो गए? क्योंकि जब दूसरी पार्टी वाली बहन आती थी पूछने, बाबा मेरा ये टाइम हो गया, क्योंकि उनको टाइम ही अलग अलग दिया जाता था कि भाई 10 बजे दिल्ली पार्टी आएगी, 10:30 बजे कलकत्ता पार्टी, 11 बजे बम्बई पार्टी आदि। और अक्सर करके वो पार्टी जब चली जाती थी तो बीच में बाबा न्यारे हो जाते थे देह से। बहन आके पूछती थी और बस बाबा के सामने भी खड़ी हो गई, बाबा की आंखें भी खुली हुई है और बस, लेकिन बाबा लीन है किसी चीज में, कोई ध्यान में नहीं है, लेकिन साक्षात्कार नहीं कर रहे, आंखें खुली हुई हैं, लेकिन जैसे यहाँ होते हुए भी ना कहीं और है, देखते हुए भी नहीं देख रहे। पास में आके खड़ी हो जाती थी, जब कहती थी बाबा बाबा, तो मैं पार्टी लेके आई हूँ, तो कई बार बाबा को जैसे ना एकदम जैसे कहीं और हम सोच रहे होते हैं और सडनली दूसरा कोई व्यक्ति या परिस्थिति आती है तो कई बार जर्क जैसा लगता है। हाँ बच्ची आ गए? हाँ बाबा फलानी पार्टी लेके, हाँ 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 ले आओ। तो यहाँ ये अभ्यास जो है, ये ही अभ्यास हमें अंत समय बहुत बहुत काम में आएगा कि जब चाहे हम देह में आए, जब चाहे हम देह से न्यारे हो जाए। एक तो ये अभ्यास जो है, और ये अभ्यास में क्या होगा, हमें धीरे धीरे ना हमारी बाह्य मुखी से अंतर्मुखी वृत्ति होती जाएगी, और ये ही फिर हमें क्या होगा अंत में संपूर्ण बनाने में इतनी मदद करेगी। मुझे याद है यही हॉल था यहाँ पर, जब तक ओम शांति भवन बना नहीं था तो यहाँ पर ही बाबा आते थे और सब लोग, हम लोग नीचे बैठते थे और दादियां वगैरह भी, या किनारे पर कुछ कुर्सियां बस रहती थी, आगे ही बैठे रहते थे। जब बाबा की मुरली पूरी हो जाती थी तो बाबा के पास दादियां, 8-10 दादियां, 7-8 जो मुख्य थी, वो आ जाते थे, बाबा के स्टेज के दोनों तरफ बैठ जाते थे। फिर बाबा कुछ जो बातें ज्ञान की दादियों से करता था वो बहुत अति गुह्य होती थी। तो मुझे याद है एक बार बाबा ने ना दादियों से पूछा, आप सब रतन बैठे हो यहाँ पर, तो आप मतलब अष्ट रत्नों में ऐसी क्या विशेषता थी कि वो बाकी 100 रत्नों से अलग हो गए? 108 का भी गायन है, लेकिन जो अष्ट रत्नों का गायन है उतना गायन तो बाकी 100 का नहीं है। तो ऐसी क्या उन्होंने पुरुषार्थ किया संगम युग में कि वो बाकी 100 से और ऊपर चले गए? क्या पुरुषार्थ रहा होगा? आप सभी, हम सभी पुरुषार्थी हैं, है? मतलब सूक्ष्म बात होगी जरूर, कोई स्थूल बात, स्थूल मतलब इतना साधारण रीति से जो हम सुनते हैं वो नहीं। तो बाबा ने ये बताया कि देखो जो अष्ट रतन होते हैं ना, उनकी नींद में भी कमाई होती है और इस कारण से टोटल कमाई का चार्ट उनका बाकी 100 की तुलना में भी ऊपर चला जाता है। तो नींद में भी कमाई कैसे हो? आप सब तो बहुत बहुत पुराने बैठे हुए हैं, तो बाबा मोटे तौर पर तो यही कहता है कि जिस स्थिति में हम सोते हैं, जिस क्षण हम नींद में एकदम चले जाते हैं, वो जैसी मेंटल स्टेज होती है, सारी रात भर जैसे उसी स्टेज में रहते हैं। अगर अच्छी नहीं होती है तो स्वप्न भी वैसे आते हैं और कमाई भी। तो इसीलिए आवश्यकता ये है कि रात को सोते समय ना जरूर हम ऐसी स्थिति में सोएं कि रात भर जो हमारे स्वप्न चले या संकल्प चले वो इतने हाई क्वालिटी के हों कि उसके अंदर भी हमें योग का और याद का अभ्यास महसूस होता रहे। तो एक ये है वृत्ति की बात, तो बाह्यमुखी वृत्ति और ये ही वृत्ति जो है ना क्या होती है, अंत में हमें जो बाबा हमें चाहता है हम केवल अपने लिए न जिए। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन अब हमारा जीवन संसार के लिए हो, अपनी भी कमाई न हो अपनी भी। इसीलिए बाबा ने कहा अमृत वेले जो योग करते हैं वो क्या है, अपने लिए शक्तियों का संचय करने के लिए है, और बाकी जो सारा दिन भरे और विशेष करके सायंकाल का जो नुमा शाम का योग है वो सृष्टि को बांटने का है। अगर अमृत वेले ही हमने संचय नहीं किया होगा तो बांटेंगे क्या, हमारे पास ही कोई चीज नहीं होगी तो हम दूसरे को देंगे क्या। तो इसीलिए जो बाबा ने बताया है दानी महादानी और वरदानी, क्या अंतर है तीनों में। हम सब लोग दानी तो बन गए क्योंकि दुनिया वालों को के प्रति हमारा तन मन धन समय बाबा के प्रति लगता है, सेवा में लगता है और सेवा दुनिया वालों की। तो वो तो जब से बाबा के बच्चे बने और जब से रियलाइजेशन हुआ तो दानी तो बन गए। दानी अर्थात तन मन धन और कर्म जो हमारा सेवा में लगता है तो वो दानी बन गया, और हम सब दानी तो यहां बैठे ही हैं। लेकिन दानी पर ही हमें संतुष्ट नहीं होना है, महादानी और वरदानी बनना है, तभी तो विश्व महाराजन बनेंगे। विश्व की आत्माओं तक अगर हम मानसिक रीति से भी नहीं पहुंचे तो विश्व महाराजन कैसे बनेंगे। तो इसीलिए ये दानी बन गया। महादानी में क्या विशेषता होती है, कई बार बाबा ने बोला और हमारे टीचर्स बहनों के लिए तो विशेष करके बाबा बोलता है ये सब महादानी आत्मा है। कौन है महादानी की और क्या एडिशनल विशेषता होती है, तन मन धन कर्म ये तो हुआ, लेकिन वाणी से जो विशेष आपने देखा होगा जब प्रदर्शनी होती है मेला होता है आप सब लोग वाणी से बहुत समझाते हैं ना, जब कितना अंदर सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है वाणी से समझाते हैं। रात को भी वैसे ही सपने आएंगे जैसे पार्टी समझा रहे हैं, और इस प्रकार से वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सूक्ष्म अर्धचेतन अचेतन मन के अंदर वो बात घुसती जाती है। तो जो वाणी से भी एडिशनल है वो वरदानी हो जाते हैं, उतना वो मल्टी प्रोपोर्शन में। आपने 10 को 100 को सुनाया, वो 100 भी अगर एक एक को सुनाने के निमित्त बने तो आपके खाते में तो वो शेयर 1000 का 10000 का 1,00,000 का 1,00,000 का जमा हो गया। रुपए की बात नहीं, उतने आत्माओं को संदेश देने का। तो महादानी वो जो वाणी से भी साथ में अधिक समय सेवा करते हैं, जिसमें कि हमारी समर्पित बहने विशेष करके उन सबका विशेष पार्ट होता है। और वरदानी कौन, जो विशेष करके अपनी वृत्ति से संसार की समस्त आत्माओं को जो सकाश देते हैं वृत्ति से। वृत्ति बड़ी सूक्ष्म चीज है, और भी हम वृत्ति का साथ में, वृत्ति का दृष्टि से बहुत गहरा संबंध है। वृत्ति का दृष्टि से, क्योंकि जैसा वृत्ति में होगा वो दृष्टि में आ जाएगा। और अक्सर हम इसे दृष्टि कह देते हैं, नहीं ये दृष्टि नहीं है, दृष्टि का आत्मा देखो, दृष्टि देखने की चीज है आत्मा। कई बार डेड बॉडी देखो, आत्मा आंखों से चली जाती है तो आंख खुली रहती है लेकिन वो देख थोड़ी सकती है ना। तो दृष्टि में एक ये विशेषता है, ये टू वे ट्रैफिक है, यानी अंदर का बाहर बाहर का अंदर। दृष्टि से हम बाहर का दृश्य देख के अंदर तो भेजते ही हैं, लेकिन हमारे मन में जो होता है वो दृष्टि से बाहर चला जाता है। क्रोध का भाव होगा, एकदम क्रोध रूपी आंख लाल और वो दृष्टि से बाहर आ जाता है, नैन चैन सब बदल जाते हैं। प्रेम का भाव होगा, वो स्नेह में डूबी आंखें वो कुछ और कन्वे कर देती हैं, पूरा प्रेम स्नेह का वातावरण। तो इसमें भी ये 5 बातें विशेष होती हैं दृष्टि में। एक है दृष्टा, दृष्टा माने जो आत्मा आत्मा की वृत्ति है वो इसके द्वारा देख रही है। तो दृष्टा कौन है? आत्मा। आत्मा देख, जैसे खिड़की में खड़े होकर देखते हैं ना, तो देखने वाला कोई और होता है, खिड़की तो जड़ है, खिड़की के थ्रू देखता है, ऐसे मैं दृष्टा। और उसमें भी आत्मा की जो वृत्ति होती है उसके द्वारा दृष्टा जो दूसरी चीज है, ये दृष्टि, ये आंख, ये खिड़की है इस शरीर की। तो दृष्टि, दृष्टा और दृष्टि। तीसरी चीज है, हम जो चीज देख रहे हैं बाहर वो है दृश्य। तो ये सब चीज अलग अलग हैं, हम अक्सर करके इन्हें मिला देते हैं। तो दृश्य, बाहर के दृश्य जो भी देख रहे हैं ना, बस दृश्य तो आ जा रहे हैं, उनका प्रभाव उतना लास्टिंग नहीं। हम ट्रेन में जाते हैं, मानो दृश्य देख रहे हैं, बहुत अच्छा भी दृश्य है, ग्रीनरी है, कहीं सूखा है, कहीं कुछ भी है, लेकिन वो दृश्य पास हो रहे हैं, बस उन्होंने दृश्य पास हो गए, हम भी उधर से गुजर गए। वो दृश्य, इन सब का आधार क्या है, दृश्यों का प्रभाव कितना, जो किसी ने बोला भी था। चौथी चीज है हमारा दृष्टिकोण, एटीट्यूड। तो कैसा, जैसे हम जिस दृष्टिकोण के होते हैं, पॉजिटिव दृष्टिकोण होगा, हमें हर चीज पॉजिटिव नजर आएगी, कमी में भी हम गुण निकाल लेंगे, गलती में भी हम कुछ विशेषता निकाल लेंगे, हर चीज में। तो दृष्टिकोण, एटीट्यूड हमारा जैसा है उस पर प्रभाव पड़ता है। और साथ में क्या है, जैसा हमारा दृष्टिकोण होगा वैसा ही इतिहास में हमारा दृष्टांत लिखा जाएगा। दृष्टांत भक्ति मार्ग की जो इतनी किताबें हुई हैं, सब में क्या है, अलग अलग भक्तों के और लोगों के दृष्टांत लिखे हुए हैं, कहीं भक्ति का ना भी हो, पॉलिटिकल का हो, कहीं गांधी जी का, हर एक व्यक्तियों के जीवन दृष्टांत में बहुत है, और उन्हीं के फिर मेमोरियल और वो बनते हैं। अभी भी न्यूज सुनते हुए आ रहे थे कार में, तो बताया कि ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शरीर अभी छोड़ा, तो उनके भी अब कितना, कहीं छत्तीसगढ़ का बता रहे थे, उस स्टेट का नाम बदल रहे हैं, कहीं उनका मेमोरियल बन रहा है, कहीं यूनिवर्सिटी का, मेडिकल कॉलेज का नाम बदल रहे वगैरह वगैरह। तो उनके भी जो यादगारें हैं, तो भक्ति की भी यादगार है जिनकी भी, क्योंकि हमसे भी ऊंचे भक्त कोई नहीं होंगे, जो ऊंचे से ऊंचे ज्ञानी रहे हैं उन्हीं के ही भक्त, ब्रह्मा बाबा नंबर वन आत्मा साकार में। तो संगम युग में ब्रह्मा बाबा नंबर वन, तो सतयुग में भी श्री कृष्ण की आत्मा नंबर वन, तो द्वापर युग से राजा विक्रमादित्य के रूप में नंबर वन। तो नंबर वार सभी, इसी प्रकार से हम सब आत्माएं उसी प्रकार से। तो जितने ऊंचे भक्त होंगे, बाबा ने कहा वो ज्ञान जल्दी उठा लेंगे संगम युग पर। हमारी दादियां वगैरह जिन्होंने 1936-37 में ज्ञान लिया, रामानुसार वो उनका भी वैसा ही पाठ चला। तो इस रीति से एक ये है कि किस रीति से हम जो है अपना दृष्टिकोण और दृष्टांत हमारा बनता है। तो ये हो गया वृत्ति के बाद दृष्टि। तो सारा खेल ही अंदर की वृत्ति का है, और वृत्ति के बाद जो कम सूक्ष्म चीज है वो तो संकल्प है। तो संकल्पों पर ही हम चेंज करते हैं, और इसीलिए संकल्प की सिद्धि, बाबा कहता है संकल्प की सिद्धि, क्योंकि संकल्प को हम अच्छी तरह पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं, लेकिन वृत्ति का चूंकि मालूम नहीं है, इसलिए वृत्ति के आधार पर ही हमारे मन के अंदर संकल्प आदि उठते हैं। तो ये है स्मृति से वृत्ति, और वृत्ति से फिर दृष्टि। तो ये तीनों चीजें अति सूक्ष्म एक दूसरे से कनेक्टेड है, और दृष्टि के बाद फिर कृति, वैसा ही हम कर्म करते हैं, और कृति के आधार पर ही हमारा प्रवृत्ति बनती है, प्रवृत्ति पूरा परिवार और समाज का परिवर्तन, और ऐसी सृष्टि परिवर्तन हो जाता है। तो सारा आधार हमारे अंदर पे, और हमारे सामने लिविंग एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा थे। देखो साकार रूप में कैसे, हाँ बाबा कहते थे, पूरा परिवर्तन बाबा ने कैसे किया, अच्छा इतना बड़ा व्यवसाय लौकिक रीति से आप सब बैठे हैं, मालूम ही है कैसे ब्रह्मा बाबा में परिवर्तन हुआ, कैसे सब कुछ त्याग करके इसकी स्थापना की। मैं कुछ अंत का दृश्य बताना चाहूंगा, क्योंकि जब बाबा ने शरीर छोड़ा 18 जनवरी को, उस समय मैं यहीं पर ही था मधुबन में। 17 जनवरी को जैसे आ गए थे, बाबा ने बुला लिया था, और 17 और 18 जनवरी को मुझे बाबा की कर्मातीत अवस्था देखने का मौका मिला। और हम सबका भी लक्ष्य कि हम सब भी कर्मातीत बन जाएं। तो पहली बात एक हमने देखी इन दो दिनों में कि जैसे वृत्ति आत्मा की सूक्ष्म, आत्मा की इच्छा का नाम जो है मतलब वृत्ति जो है वो है तो इच्छा, और इच्छा को जीतने के लिए इच्छा मात्रम अविद्या। तो बाबा की दो दिन में 17 जनवरी और 18 जनवरी हम 5-6 बार बाबा से मिले। इससे पहले भी 62 से जब से ज्ञान में आए हैं हर साल ही 3-4 बार मिलना हो जाता था, बहुत बार बाबा से मिले। बाबा बस कहते थे हाँ बच्चे क्या है, तो कुछ हम लोग अपने पुरुषार्थ की बात, सेवा की बात, कोई भी बात बताते थे, बाबा उसका उत्तर देते थे समाधान। लेकिन अंतिम दो दिनों में जैसे ही हम बाबा के सम्मुख जाते थे कि बाबा को हम ये बताएंगे पुरुषार्थ की बात, बाबा को ये सेवा की बात बताएंगे, तो बस बाबा ने दृष्टि दी और बोलने की अक्षर एक अक्षर भी जरूरत नहीं पड़ी। और बाबा ने कहा अच्छा बच्चे ये बताने आए हो, ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाए। यानी एक अक्षर भी पहले हम बाबा को बताते थे तो बाबा समाधान देते थे, लेकिन जब बाबा की कर्मातीत अवस्था हो गई तो बस गए, बाबा ने एक सेकंड दृष्टि दी, दृष्टि से मन की बात पढ़ी और प्रश्न भी बता देते थे, समाधान भी देते थे। तो पहली बात तो ये कि जब हम भी कर्मातीत अवस्था के निकट होंगे, जब हमारे संपूर्ण संस्कार परिवर्तित हो जाएंगे, तो हम भी मन जीते जगत जीत बन जाएंगे। और इसी को ही इच्छा मात्रम अविद्या, मेरे मन में क्या चल रहा है, क्या इच्छा है, बाबा के सम्मुख जब जाते थे बाबा मन की इच्छा को पढ़ लेता था और समाधान कर देता था। तो पहला लक्षण ये। दूसरा उसमें कि ऐसा कहते हैं जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो जो अंत मते सो गते कहते हैं ना, अंत में हमारी मति वैसी होती है जहां पर भी कहीं हमारा लगाव होगा, झुकाव होगा, कोई अनफिनिश टास्क होगा, कोई बात हम चाहते हैं ये करूं लेकिन वो करने से पहले ही मानो मृत्यु आ गई, तो वो बात बार बार हमें याद आएगी, अरे मैं ये करना चाह रहा था ये नहीं। हम अक्सर मधुबन में देखते हैं कई बीके भाई बहने बहुत समय से ज्ञान में होते हैं, सब शरीर छोड़ दिया, जब उनके परिवार वाले आते हैं भोग लगाते हैं तो भोग लगाने के बाद फिर परिवार वालों का क्या होता है कि देखते हैं कि यहाँ पर वो आत्मा बस कई बार बड़े आंसू बहाते हैं, संदेश जब देते हैं बाबा को भोग लगाते हैं, भोग स्वीकार करके फिर वो कहते बाबा मेरी ये इच्छा थी, मैं चाह रहा था ये करूं वो करूं और ये कल करूंगा कल करूंगा, करते करते काल आ गया, मैं आ गया, अब देखो वो काम रह गया। कोई बताते थे मेरा पैसा, मैं इतना और यज्ञ को करना चाहता था या सेवा करना चाहता था, लेकिन हाँ मैं विल में कर दूंगा, लिख दूंगा, नहीं कर सका, अब बच्चे तो मेरे है नहीं ज्ञान में, वो तो करेंगे नहीं। तो बाबा भी बताते हैं बच्चे अब तो जो करेगा सो भाग्य बनेगा, बच्चा करेगा बच्चे का भाग्य बनेगा, अब तो तुम्हारा नहीं। ऐसा ऐसी बातें तो बाबा जो कहता है कि और दुनिया वाले तो वैसे रोएंगे लेकिन खून के पश्चाताप के आंसू ब्राह्मण बच्चों को रोने पड़ेंगे। तो इसीलिए अभी भी हम जागृत होकर के कोई भी ऐसी बात अगर जो हमारे मन में करने की है और अभी तक नहीं की है अच्छे, उसको हम पूरा करें। तो बाबा का भी देखा बाबा, हाँ उस दिन बाबा ने दादी को बोला, यीशु दादी को, आज जितने भी पत्र हैं, पहले तो ये इंटरनेट और ईमेल नहीं होते थे, तो बच्चे जितने उत्तर लिखाने हो लिखा लो, कोई भी ऐसा न रह जाए पत्र जिसका उत्तर नहीं लिखा, क्योंकि फिर बच्चों के संकल्प चलेंगे मैंने तो बाबा को पत्र लिखा और बाबा तो चले गए, क्योंकि बाबा को आभास हो गया था बस आज मैं जाने वाला हूं। हमारी भी जब कर्मातीत अवस्था होगी हमें भी पहले से आभास हो जाएगा। तभी तो भीष्म पिता का गायन है, इच्छा मात्रम अविद्या। अगर दुनिया की तरह हम बच्चे भी मर गए, शरीर छोड़ दिया, बीमारी कोई हुई, हार्ट ये मतलब अर्थक्वेक आया, फ्लड आया, कुछ आया, उसके वशीभूत होकर शरीर छोड़ा, तो हमें और दुनिया वालों में अंतर क्या हुआ? भीष्म पितामह की तरह इच्छा मृत्यु हो, हम जब चाहें, जैसे ब्रह्मा बाबा ने चाहा, हमने तो दो दिन पूरा स्टडी किया ब्रह्मा बाबा को अंतिम, बस जब ब्रह्मा बाबा ने चाहा, बाबा अब मैं आ रहा हूं ये शरीर छोड़ के, बाबा को आभास हो गया था। तभी बाबा ने कहा जितने पत्र लिखाने हो पत्र लिखवा लिए यीशु दादी ने, कोई भी पेंडिंग काम नहीं रहा। तीसरा, नक्की लेक पे जो म्यूजियम है वो बिल्डिंग में लेने की बात चल रही थी, पुरानी बिल्डिंग थी, अभी तो बाद में बहुत रेनोवेट कर दी है, कि वो सेवा के लिए ले, क्योंकि ये तो आश्रम है, सेवा स्थान वहां बनाया जाए, तो कई दिनों का था, लेकिन बाबा ने उसी दिन ही उस पर साइन किए फाइल पर, हाँ ये बिल्डिंग ले ली जाए। ये अनफिनिश्ड टास्क था, ये भी नहीं तो बाबा के संकल्प में रहता, वो तो लेना चाहिए, क्योंकि उसमें भी हो रहे थे ले न ले, तब हमारे यज्ञ पे इतने साधन नहीं थे, इतने धन सुविधा नहीं थी लेने की, लेकिन वो ले लिया गया। देखो कितनी देश विदेश की सर्विस कर रहा है। चौथी बात, उस दिन हाँ रोज क्लास यहाँ पर 8:45 होती है, 9 बजे, उस दिन बाबा ने 6:30 ही जमुना प्रसाद भाई को बोला कि आज बाबा जल्दी क्लास कराएगा, तो बोलो सब बच्चों को कि भोजन करके आ जाए 7 बजे तक। तो भोजन करके, क्योंकि बाबा को मालूम था क्लास के बाद बाबा तो ये देह का त्याग करेगा, तो इस कारण से अगर भोजन न किया होता बच्चों ने, जो नॉर्मली कई बार बाद में भी कर लेते थे, तो ऐसा न हो वो मतलब बच्चे भूखे ही रह जाए। तो सबको बाबा ने एक एक से बुझ के, ब्राह्मणी को, ये बोली दादी को बोल के, सबको भोजन करा के फिर क्लास में भेज दिया। और पांचवी बात, जब बाबा क्लास में आए तो बस बाबा का स्वरूप वैसा ही था, बिल्कुल जैसे बाल कृष्ण जैसा, अंत में जैसे वो संस्कार एमर्ज हो जाते, वो बड़ा सा चोपा ऐसा टोपा पहना हुआ बच्चों बाल कृष्ण को जैसे दिखाते हैं, पूरा व्हाइट, ठंडी के दिन थे, जनवरी का महीना था, तो बाबा आए और मुरली पूरी चलाई। वैसे बाबा को कई बार कफ आता था, खांसी आती थी, लेकिन आप वो अंतिम मुरली सुनो, एक बार भी न बाबा को कफ हुआ, न खांसी हुई, न एक बार भी कफ निकालने की जरूरत पड़ी। वो इस बात का प्रतीक है कि जब हमारी भी कर्मातीत होगी ना, बाबा की कर्मातीत अवस्था थी, तो जब कर्मातीत अवस्था होती है तो शरीर के कर्म भोगों के ऊपर योग बल जो है संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेता है। तो एक बार भी जो खांसी रूपी परिस्थिति थी उसने परेशान नहीं किया, और स्वस्थिति ने परिस्थिति पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर ली। तो क्योंकि बाबा ने कई बार कहा है कि कर्मातीत अवस्था हो और आत्मा तुरंत शरीर छोड़ दे, उसका क्या फायदा? क्योंकि कर्मातीत अवस्था हो और उसका कुछ समय, कुछ घंटे तक अनुभव करें, तब उसको बयान कर सकेंगे कर्मातीत अवस्था क्या होती है, कर्म से अतीत स्थिति। इस रेफरेंस में मैं एक बात बताना चाहूंगा मम्मा की। जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तब साकार बाबा तो थे, 65 की बात है, तो मम्मा जब सूक्ष्म वतन में गई, वहां सूक्ष्म वतन वासी ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा ने, जैसे बाप दादा ने वहां पूछा, मम्मा आप अनुभव करके आई कर्मातीत अवस्था का? तो मम्मा ने कहा, बस मम्मा हमेशा जैसे चुप रहती थी, थोड़ा चुप रही। तो मम्मा ने, जब बाबा ने पूछा फिर, तो मम्मा ने कहा कि नहीं, तब तक इतनी क्लैरिटी ज्ञान की 1965 तक और भी नहीं थी, ज्ञान की बहुत ज्यादा सूक्ष्म बातें तो 69 और उससे पहले 67 68 उन सब में बाबा ने ज्यादा ज्ञान के गुहे राज्य खोले हैं। तो फिर बाबा ने कहा, जाओ मम्मा, अभी आपका शरीर वहां पर हिस्ट्री हॉल में रखा है, और जाओ और कर्मातीत अवस्था का अनुभव करके आओ। 1965 की बात है जब मामा ने शरीर छोड़ा, भाई। तो उसके बाद मामा मतलब थोड़ा टाइम गुजरा और फिर जब मामा ऊपर गए तो ऊपर जाके बाबा ने पूछा, मामा अनुभव किया कर्मातीत अवस्था का? तो मामा ने कहा, नहीं बाबा। तो क्यों नहीं किया? कि बाबा जब गई तो शरीर तो एकदम जैसे ठंडा हो गया था, शरीर में कोई भी चुरपुर नहीं हुई, और कर्मातीत अवस्था का अनुभव यानी कि कर्मेंद्रियों से किया जाता है, देखते हुए भी न देखने की स्थिति, आंख जब चेतन खुलेगी नहीं आंख, भले आत्मा लौट के आई लेकिन आत्मा को शरीर का साथ तो चाहिए ना, तभी तो नेत्र कान आंख सब वो करेंगे, भले कुछ समय के लिए हो जाए। तो कोई भी अनुभव नहीं हुआ तो मैं तो आ गई, क्योंकि शरीर बिल्कुल ठंडा हो गया था, कोई भी उसमें चुरपुर नहीं हुई। तो बाबा ने कहा, देखो बच्ची ना, हर बच्चे को अपनी अपनी कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना है। जब हम सब भी शरीर छोड़ेंगे तो कर्मातीत स्थिति हरेक की अलग अलग होगी। किसी की मतलब ऐसी होगी जो त्रेता में आने वाला होगा, वहीं से जो यात्रा शुरू होने वाली होगी उसकी वैसी स्थिति की कर्मातीत होगी। जो एकदम सतयुग में पहले जन्म से होगा उसकी बड़ी उच्च कोटि की कर्मातीत स्थिति होगी। तो इसलिए अब तो जाओ जन्म लेके फिर नया पूरा पार्ट बजा के और फिर कर्मातीत स्थिति की अनुभूति करके, क्योंकि जाना तो हम सबको परम धाम में इकट्ठे ही है पवित्र हो करके। तो इसीलिए ये जो हमारे मात पिता हैं, इनकी जो अनुभव है उनसे यही लाभ लें कि हमें भी इच्छा मृत्यु का हो, हम भी ऐसी स्थिति तक पहुंचे कि जब हमें शरीर छोड़ना हो हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़े। तो मैं बाबा का बता रहा था कि बाबा उस दिन आए, एक बार भी बाबा को खांसी नहीं आई और एक बार भी कफ की जरूरत नहीं पड़ी साफ करने। तो फिर बाबा अच्छा, बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है, दरवाजे पर खड़े होके बाबा ने कहा। पहले बाबा ने कभी ये नहीं बोला, मुरली के बाद जैसे आज तक भी सुनते हैं, अच्छा बच्चों को गुड मॉर्निंग गुड नाइट जैसी स्थिति होती है, लेकिन उस दिन बाबा ने ये खास बात बोली। हमें एक विशेष अनुभव हुआ उस अंतिम मुरली में, हिस्ट्री हॉल में बाबा बैठ के मुरली चला रहे थे और हम सम्मुख मुरली सुन रहे थे, 18 जनवरी की रात्रि क्लास। ये अभी भी रात्रि क्लास यहाँ पर मिलती है ओम शांति भवन के नीचे, और उनसे कहेंगे साकार मुरली की दो। तो बैठे बैठे हमारे मन में संकल्प उठा, मैं भी बहुत यंग था उस वक्त, 21-22 साल का, 23, तो बाबा कुछ बोले और हमारी उसके लिए उन्नति के लिए और कोई बात, बस संकल्प किया बाबा तक पहुंचा होगा। ये कर्मातीत अवस्था की आत्मा का लक्षण होता है। लौकिक में भी बोलते हैं ना, भक्त ने इच्छा की भगवान तक पूरी हुई, और भगवान क्या वरदान देता है, बस तथास्तु। कोई बार्गेनिंग नहीं होती, कोई ये नहीं होता कि ये वरदान मत लो ये ले लो, नहीं, जो भी भक्त के मन में होता है संकल्प भगवान पूरी कर देता है। ऐसे हमें संकल्प हुआ कि बाबा कुछ बोले, क्योंकि हम बहुत दूर आसाम में पोस्टेड थे और बाबा ने ही वहां भेजा था सेवा के लिए, और वहां से बाबा ने अंत समय बाबा ने वायदा किया था जब हम जा रहे थे कि बच्चे बाबा समय पर तुम्हें बुला लेगा। तो अंतिम समय बाबा ने बुला लिया, प्लेन से आए, 69 की बात है, समय पर पहुंच गए, दो दिन बाबा के साथ थे। तो यहां पर संकल्प उठा तो बाबा ने बस मुरली देखो ये बच्चा मोहन है ऐसा कह के, बहुत मीठा बच्चा है और कभी किसी की निंदा नहीं करेगा आदि आदि, और संपूर्ण बन जाएंगे। तो ये बाबा ने जो वरदान दिए और वो आज तक भी हमारे माइंड में जैसे कि छपे हुए हैं, क्योंकि अंतिम समय वो बाबा की कर्मातीत स्थिति। और मुख्य बात तो ये कि जो संकल्प उठा वो बाबा तक पहुंचा, बाबा ने कैच करके तुरंत ही उसका समाधान कर दिया। ये कर्मातीत अवस्था की आत्मा का लक्षण है। और जब हम भी कर्मातीत होंगे तो हम जैसे दुनिया के सामने मास्टर ब्रह्मा हैं, दुनिया हमारे सामने आएगी, भक्त आत्माएं आएंगी, बहुत अलग अलग संकल्प और इच्छाएं लेके आएंगी, लेकिन उस समय बोलने का समय नहीं होगा, बस वो हमारे सम्मुख आए, हम उनके नैनों से पढ़े उनकी क्या इच्छा है और वो अपनी इच्छा की पूर्ति का अनुभव करें कि हाँ मैं जो संकल्प लेके आया मेरा संकल्प पूरा हुआ। इसी को बाबा ने कहा, रोती हुई आत्मा आए हंसती हुई चली जाए, अशांत आत्मा आए शांति की अनुभूति उसके सागर में लहराती हुई। तो ये हमने प्रैक्टिकली उस दिन ये भी अनुभव किया। तो ये अंत समय का, हम भी अभी अगर कोई पेंडिंग काम पड़े हुए हो वो पूरा कर दें अंत समय में, जो वो याद ना आए, और उसके बाद वंडर एक आश्चर्य तो उसके बाद देखा। क्या बात की, बस बाबा कमरे में गए, दादी जी के हाथ में हाथ, बाबा ने शरीर त्याग किया। और उस वक्त जब बाबा चले गए, बाद में बाबा से एक ये पूछा कि बाबा आपकी अंतिम स्टेज कैसी थी, क्या आपको अनुभव हो रहा था जब आपने शरीर छोड़ा। ये सब लिखा हुआ है, 13 दिन तक भी भोग लगा तब भी अलग अलग बाबा अनुभव बताते रहे। तो बाबा ने बताया कि बच्ची अंत समय बहुत युद्ध चल रही थी। एक तरफ कर्म भोग की शरीर की अंतिम जैसे जो स्थिति थी ना, अति दर्द था, बहुत दर्द था, पीड़ा थी, और दूसरी तरफ योग बल बाबा जैसे ऊपर खींच रहा था। तो योग बल की और कर्म भोग की दोनों की बहुत गहरी युक्ति थी। कभी कर्म भोग भारी हो जाता था, कभी योग बल। तो शुरू में कर्म भोग भारी था, बहुत दर्द था, ओ बस बाबा भी जैसे पूरा लास्ट का हिसाब किताब चुकतू कर रहा था, दीवा बुझने से पहले जैसे टिमटिमाता है ना तेजी से, ऐसे शरीर की भी, शरीर से आत्मा का हिसाब पूरा हो गया था। तो वो आत्मा जैसे निकलने की तैयारी थी, लेकिन शरीर भी पूरा अंतिम जैसे युद्ध कर रहा था। तो एक ये, और दूसरी तरफ योग बल, तो वो सूक्ष्म इतनी जो कमाई की हुई थी वो योग बल। तो शुरू में कर्म, ये जो कर्म भोग वो बहुत कष्टदायक थे, वो था योग बल कम, लेकिन धीरे धीरे योग बल भारी होता गया और कर्म भोग हल्का, और बाबा ने जैसे फिर उसके बाद देह त्याग किया। तो अंत हमें भी अगर कभी कर्म भोग बहुत परेशान करे तो बस हमें यही समझना चाहिए कि बाबा थैंक्स, क्योंकि ये कर्म भोग अब 21 जन्म तक तो आएंगे नहीं आत्मा के सामने, सतयुग त्रेता में तो ये शरीर की कोई भोगना होगी नहीं, तो थैंक्स बाबा, अभी हमारे लिए से ये 21 जन्मों के लिए छुट्टी ले रहे हैं। परेशान न हो बल्कि बाबा को थैंक्स करके ही, और परिस्थिति में स्वस्थिति हम इतनी मजबूत करें कि परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त कर लें। तो ये बाबा की ये और अंतिम स्थिति उस वक्त देखी हमें भी ये, और बाबा को जब लिविंग में जब ऐसा होता था तो मुरली सुनाते सुनाते कभी बहुत खांसी आती जाती थी या कुछ, तो बाबा कहता था देखो बच्चे, बाबा के बगल में वो लगे हुए थे पिक्चर कृष्ण के और लक्ष्मी नारायण ट्रांसलेट, वो कल बाबा जाके ऐसा कृष्ण बनेगा, नई दुनिया होगी, नए तत्वों से बना नया शरीर होगा, कोई कष्ट नहीं होगा, अभी तो ये पुराने तत्व है पुराना शरीर है। तो परिस्थिति, खांसी रूपी परिस्थिति जो बहुत परेशान करने आती थी, बाबा अपनी स्वस्थिति से उसको, परिस्थिति को नीचा कर देता था, स्वस्थिति ऊपर आ जाती थी और थोड़े टाइम में बिल्कुल बाबा नॉर्मल होके वही चलाने लगते थे मुरली। तो हमें भी ये देखना है कि परिस्थिति कभी भी हमारे ऊपर हावी ना हो, कोई तन मान धन संबंध कोई भी शरीर की परिस्थिति हो, वो आएगी, जरूर आएगी अपना हिसाब किताब चुकतू करने के लिए, लेकिन हमारी स्वस्थिति इतनी शक्तिशाली हो कि वो परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त कर ले। उसके बाद बाबा ने जब कमरे में जाके शरीर छोड़ा, बाबा का ये शरीर रखा रहा, क्योंकि 18 जनवरी की अर्ली नाइट में बाबा ने शरीर छोड़ा, 18 की रात, 19 का दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, और 21 को दोपहर के बाद बाबा का संस्कार किया गया। लेकिन बाबा का शरीर वैसे ही चमकता रहा, कोई इंजेक्शन नहीं लगाया गया था, कोई बदबू नहीं आई, कुछ नहीं, और कोई केमिकल लोशन कुछ भी नहीं, सिर्फ बाबा का शरीर वहां रखा हुआ था, और वंडर ये देखा कि जब हम लोग बाबा का शरीर उठा के शांति स्तंभ की तरफ, वहीं पर अग्नि संस्कार हुआ बाबा का, जब ले गए बाबा को स्नान आदि कराया, तो भी बाबा के शरीर में काफी हद तक फ्लेक्सिबिलिटी थी। ये होता नहीं है, आत्मा जब शरीर छोड़ के जाती है तो दो चार घंटे में ही शरीर बिल्कुल स्टिफ हो जाता है। तो ये है तत्वों पर भी, प्रकृति पर विजय। हमें मन पर तो विजय करनी है, मन जीते जगत जीत, लेकिन जगत के अंदर तो प्रकृति भी आ गई, पांच तत्व भी आ गए, तो इन से बना ये शरीर भी हो गया। तो बाबा के शरीर में इतने तक, पूरी की पूरी नहीं लेकिन काफी हद तक जैसे थी वैसे ही शरीर चमकता रहा, कोई दुर्गंध नहीं, कोई भी कालापन नहीं, इतने 65 घंटे के बाद भी ऐसा शरीर। तो ये प्रकृति पर विजय का प्रतीक है। तो अब हम बच्चों को भी मन के साथ साथ, संस्कारों के साथ साथ प्रकृति पर भी विजय प्राप्त करनी है। और इसका तो एक बहुत अलग बड़ा वो होता है कि कैसे प्राप्त करें, वो तो इस विषय का वो नहीं है, लेकिन हम लक्षण यही रखें कि हमें प्रतिदिन प्रकृति को भी कुछ मिनट योगदान करना है। पांच तत्व जहां पर दिखें ऐसी जगह, जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी, और अग्नि का प्रतीक तो सूर्य है, तो जहां वहां पर करके और दो दो मिनट, तीन मिनट, हर एक तत्व को जैसे हम योगदान भी करते रहे। उससे क्या है, जब परिस्थिति आएगी, अर्थक्वेक आएगा, फ्लड आएगा, सुनामी आएगी, वो जितनी भी तेज हो, लेकिन ये हमारी मृत्यु का कारण नहीं बन सकती। समय से पहले ही बाबा ने कहा है, मैं बच्चों की रक्षा के लिए बंधा हुआ हूं। बस बच्चों को अपना ये एरियल इतना स्पष्ट रखना है कि बाबा जो टच करे समय पर उसको रिसीव करके, बाबा ने कहा बच्चों के पैर ऑटोमेटिकली वहां बढ़ेंगे जहां पर सेफ्टी होगी। बस पास में थोड़ी दूर तक भी आपदा की भयंकर परिस्थिति होगी, लेकिन उसके बाद आप बच्चे सेफ्टी से, आपके लिए वसूली से कांटा हो जाएगी, जैसे ब्रह्मा बाबा का भी देखा। तो इस रीति से बाबा हम लोगों के सामने रोल मॉडल थे, तो हम लोगों को भी वैसे ही ब्रह्मा समान है। बाबा कहता है ब्रह्मचारी तो बन गए, अब क्या बनना है, ब्रह्माचारी। तो ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखते हुए, संस्कारों पर विजय प्राप्त करते हुए भी हम भी बाबा के साथ साथ, जाना तो परमधाम इकट्ठा है, बाबा इंतजार कर रहा है अभी सूक्ष्म वतन में। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता जी का, कितनी सुंदर प्रेरणाएं आप सबको प्रेरणा स्रोत बनाया, और प्रेरणा स्रोत बनकर आपको कितनी सुंदर प्रेरणाएं दी, मम्मा बाबा के कितने सुंदर अनुभव आप सभी ने सुने। और मुझे तो लास्ट की बातें बहुत अच्छी लग रही थी, कर्मातीत स्टेज की, कितनी सुंदर बातें हम सभी को आदरणीय भ्राता जी ने बताई, इसके लिए भ्राता जी का बहुत बहुत धन्यवाद हो।